ये परमात्म प्रकाश का उपसंहार चल रहा है। जो परम सत्य की भक्ति में लीन रहते हैं वे क्या नहीं करते, ये बताते हैं। विषयों और कथाओं से दूर रहते हैं वे ही परमात्मा में आराधना में रूप में लीन रहते हैं।
जे परमात्मा भक्ति विषयन देवी रमन हे परमात्मा भक्ति विषयन देवी रमन ते परम पपयासय मुनिवर योग्य भवन।
विषयों की ओर जिनका मन नहीं जाता वे परमात्म पद के भक्ति में लीन रहे ऐसा माना जाता है। वे ही परमात्म प्रकाश के योग्य मुनि माने जाते हैं, यानी परमात्म प्रकाश के अध्ययन आराधना के लिए भी विषयों का त्याग, विषयों से दूर होना अनिवार्य है। यह आप लोग जानते हैं, एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते। दो मुख पंथी चलेन पंथा, दो मुख सुई सीन पंथा, दो बात नहीं हो ये सयाने, विषय और को मोक्ष हो जाने, ऐसे कुछ कहते। निश्चित है कि एक साथ दोनों तरफ चल नहीं सकते और एक साथ दोनों तरफ से सी नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी विधा है जिसके द्वारा हम मोक्ष भी चले जाएं और विषयों का भी अनुभव रस दे लें, संभव नहीं हो सकता। यह भले ही मोही के लिए कटु सत्य हो सकता है, उसे इसी कटु वाणी के द्वारा सुनाना पड़ेगा। तुम्हारी जब तक यह विषयों की आदत सुधरती नहीं तब तक के लिए मोक्ष की बात भी एक प्रकार से फीकी फीकी मानी जाएगी। उसकी शोभा तो वही है, विषयों से ऊपर उठना अनिवार्य है। विषय और कषाय ये संसार के लिए मूल जड़ है और इनका त्याग संसार के लिए नहीं मोक्ष के लिए सोपान के काम करना है। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणत न जा। दौलत राम जी के द्वारा ये लिखा हुआ बहुत सरल भाषा में किंतु बहुत अच्छे शब्दों में ऐसे यह स्तुति भगवान की, जो पढ़ता है तो एकदम सामने सामने अर्थ सामने आ जाता है कि हमें क्या करना है। विषय और कषाय हमेशा हमेशा अभिशाप के रूप में ही कहा गया है और विषय और कषाय का त्याग हम लोगों के लिए वरदान है। परमात्म प्रकाश हमारे भीतर आत्म तत्व है, उसका प्रकाश कितना बड़ा है तीन लोग को भी जानने की देखने की क्षमता उसके पास विद्यमान है। कितने भी सूक्ष्म पदार्थ क्यों न हो और कितने भी बहुत दूर काल को स्पर्श करने वाले परिणाम भी क्यों न हो, उन सबको हाथ में रखे हुए आंवले के समान वह देखता जानता, ऐसी क्षमता उस केवल ज्ञान प्रकाश में विद्यमान है। और चींटी से लेकर के हाथी तक प्रत्येक आत्मा की यह क्षमता शक्ति विद्यमान है। दशा यह जो बुरी हुई है संसारी प्राणी की, केवल एक ही मात्र शरीराधीन और विषय और कषाय के कारण यह दशा हुई है। इनका त्याग ही इसके लिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत का काम कर जाता है। हवन ते योग्या के ते मुनिवरा मुनि प्रधाना, जो मुनियों में भी प्रधान है वे से पूर्वोक्ता किसके योग्य है, कस्य योग्या भवंती। व्यवहारेण परमात्म प्रकाश संज्ञक ग्रंथस्य, व्यवहार दृष्टि से परमात्म प्रकाश जो ये ग्रंथ है इस ग्रंथ के आराधक पाठक वे मुनि महाराज होते हैं जो विषयों के ऊपर उठ चुके हैं। परमात्म सेन तो निश्चय की विवक्षा में परमात्म प्रकाश शब्द सब वाच्य शुद्धात्म स्वभाव परमात्म प्रकाश ये शब्द है, इस शब्द के द्वारा हम वाच्यभूत अर्थ कौन सा स्वीकार कर लेते हैं, अपना अपना आत्म तत्व जो कि प्रकाश पुंज माना जाता उसको प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। कथम भूता ये वे कहते हैं मुनिराज भक्तिर ये परमात्मन भक्ति परा ये परमात्मा की भक्ति में लीन है, पर मैंने लीन होता है जैसे तत्पर बोलते हैं, तत्पर मैंने तस्मिन पराह दीना तन्मया कि उसमें वो लीन होते हैं, परम पद में जो लीन रहते हैं या परमात्म पद में जो लीन रहते हैं उनकी आराधना में हमें लगे रहते हैं वे ही उस पद को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। वो और क्या करते हैं, पुनर्विक्षण कुरवंती ये ऐसे सीधे सीधे परमात्मा में मन लगता है क्या, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, मन के अनुकूल अच्छे भवन बना दो, मंदिर बना दो, ऊपर पंखा चला दो, कूलर हीटर इत्यादि के वातानुकूल बना दो, फिर इसके उपरांत गदिया तकिया वगैरह जो कुछ भी हो उसकी लगा दो, फिर एक बात है आत्मा की बात कर ले, पांच एक मिनट में लग जाएगा, किसी को एक मिनट में लग सकता है, किसी को आधा घंटे में लग जाएगा, आखिर लग तो जाएगा, मन कहाँ जाएगा। फिर ये ध्यान रखना तत्पर होने की बात ये इन बातों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, किंतु और क्या करते हैं, निर्विषय परमात्म तत्व अनुभूति समुत्पन्न अतीन्द्रिय परमानंद सुकारता स्वाद तृप्ता संत सुलभान मनोहरान कति विषयान न रमनते। हमेशा हमेशा बात ये ध्यान रखने योग्य है, जो कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी रममान होता हो रमता हो, इससे स्पष्ट है कि अन्यत्र इसलिए वह नहीं रमता कि उसको वह उसी दृष्टि से स्वीकार करता है। जो जहाँ पर रम रहा तीन लोक में उससे बढ़कर के उसकी कोई अच्छी वस्तु नहीं है इसलिए उसमें रम रहा, यदि है जाए उससे अच्छी वस्तु निश्चित रूप से उसी ओर उसकी दृष्टि क्या है। आप विष खाना नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि भोजन तो करना है, लेकिन विष इसलिए नहीं खाना चाहते जीवन को सुरक्षित रखना, विष के द्वारा जीवन जब खतरे में पड़ जाता है इसलिए हमें नहीं चाहिए, भले ही भोजन मिले या न मिले इससे कोई परवाह नहीं, किंतु विष विषाक्त भोजन का सेवन हम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भोजन ही जीवन के लिए हम जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं। उसी प्रकार हमें यह बताना आवश्यक है कि भगवान में हमारे भक्ति क्यों नहीं होती, और नहीं चाहते हुए भी ऋषियों की ओर क्या क्यों जाते हैं, नहीं चाहना ये एकमात्र आपका ऊपर का कहना है, जहां पर आपका मन जाता है और बंधन के उपरांत जो वहां पर जाता है इसका स्पष्ट अर्थ है भीतर से आप लोग बहुत उसका समर्थक है, चाहते हैं, भले ही ऊपर कहते चले जाते हम नहीं चाहते। विषय निर्विषय से रहित परमात्म तत्व की अनुभूति से उत्पन्न अतीन्द्रिय जो परमानंद सुख है उसके आस्वादन से जो तृप्त हो चुके हैं, ऋषियों के द्वारा संसारी प्राणी तप्त होता चला जाता है, जबकि अतीन्द्रिय सुख के द्वारा वह तृप्त होता चला जाता है, तृप्ति नहीं आ रही है इसलिए उस चीज को छोड़ देना चाहिए। आकुलता जिससे और ज्यादा बढ़ जाती है तो वह आकुलता की जड़ हो तो कारण है उसको निकाल देना चाहिए। प्यास बुझाना चाह रहे हैं और प्यास बुझाने के लिए पानी पीते भी जा रहे हैं और दुगनी यदि प्यास लगती है तो उस प्यास बुझाने के काम में आने वाला जो पानी है उस जल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लवण मिश्रित जल के सेवन करने से प्यास दुगनी हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कषाय के कारण हमारी जो तृप्ति तो दूर रही लेकिन संतप्त होता हुआ चला जाता है। यहाँ से विषयों का कषायों का भले ही वृद्धावस्था में छोड़ दिया मान लो, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होने के कारण तप होता हुआ भी वहां पर जो देवों में जाता है तो वहां पर ये विशेष सुख के अधीन होने के कारण संक्लेश परिणाम में ही लीन हो जाता है, धर्म ध्यान में उसका मन लग नहीं सकता। यहाँ भी स्थिति यही है, नरकों में स्थिति यही है, तिरिंज गति में यही स्थिति है और देव गति में भी यही स्थिति है, कहीं अकाम नजरा कर लेता है, कहीं कुसब कर लेता है, वहां पर जाकर के सारूप आयु तक वह झुलसता ही रहता है। क्योंकि आचार्य ने ये कहा है कि देवर्धि दर्शनात् प्रभवं सम्यक दर्शनम्। देवों की रिद्धि के देखने से जिन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो या बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में थोड़ी सी हमें सोचना तो ये है कि देवों की रिद्धि देखने से कैसे, अरे ये बात है कि इनका पद बड़ा क्यों हुआ, इनके लिए इतने पत्नियां स्त्रियां अप्सराएं क्यों मिली, इनके अंदर में इतने देव बड़े बड़े क्यों रहते हैं, हुकूमत अधिकार वाली बात इन्हीं के साथ क्यों चुपकी, आधे ऐसी बात देख करके वह तुलना करता है और उसे ज्ञात हो जाता है ये धर्म का फल है ये अधर्म का फल है। मुझे जो हीन दशा दीन दशा आज स्वर्ग में भी प्राप्त हुई है उसका मूल कारण ये है कि मैंने धर्म की आराधना नहीं की। इतनी नहीं, धर्म की आराधना के लिए बहुत मन हुआ लेकिन तुलना करने से देवों के रिद्धियों को देखने संबंध से प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है धर्म का फल ये है, अधर्म का फल ये है। तृप्ति कैसे होगी, क्यों कशान की तरह तृप्ति नहीं होती, बंदे तृप्ति जो होती है तो विद्यातीत अतिथि आनंद सुखान के ही होती है। तो ऐसे आत्मानुभूति से उत्पन्न आनंद से जो तृप्त हो जाते हैं वे विषयों की वो भूल करके भी ध्यान करके देखना नहीं चाहते। और जो कोई भी आ जाता उपदेश सुनने के लिए उसके लिए भी यही बात कही जाती है, अनंत काल हो गया जिसे कशान ने उलझते उलझते और अपनी आत्मा को झुलसाते झुलसाते आ सकते। एक बार ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा या विषय और कषाय छूट जाए तो कैसे छूटे, उसको गौण करके आत्मा की बात गौरव के साथ सुनो। जो अपनी आत्मा है वह प्रभु बनने की क्षमता रखती है। तो सुलभान मनोहरान अपनी विषयान, ये विषय और कषाय ये जो है बहुत सुलभ है। ऐसी कौन सी गति है जिसमें विषय नहीं हो बताओ, नरक में तो नहीं, नरक में नहीं, ये निश्चित बात है। विषय बाहर को मान रहे हो, खाना चाहता नहीं हो चाहता, पीना नहीं चाहता है चाहता, सिंधु नील से चार समझा तो पर बूंद ने एक ला, बूंद मिलती नहीं ये बात अलग है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी तो याद आएगा और ऐसे पानी को पीने के लिए वह चला जाता है कि वैतरणी नदी बहती रहती है, चलो यहाँ पर स्नान कर ले धोले धोले और पानी थोड़े से पी ले, वह चला जाता है कि जैसे अग्नि बरस रही हो उस प्रकार की नदी में, वह आग की नदी में प्रवेश करता है, छटपटा जाता है, भीतर से बाहर आने की क्षमता नहीं रहती और पानी तो एक अंजलि पी ले तो वह अंजलि ही सारे सारे बिखर जाती है, उंगलियां और ऐसे जैसे कोर से बहते हुए जो इस प्रकार के हाथ हो जाता है। स्थिति ऐसी है, पानी पीने की इच्छा है लेकिन पानी नहीं है, खाना खाने की इच्छा है लेकिन ये खाना नहीं, छाया की इच्छा है लेकिन तुम सेवर करो सेमर करो उसके नीचे जाकर के बैठा, छाया में जल छाया नहीं, सरोज के समान एक एक पत्ते उसके ऊपर आकर के गिर जाते हैं और वह हाथ बैठा करे टूट कहाँ जाता, जहाँ बैठने के लिए भी नहीं, जहाँ पैर रखता वहां पर हजार हजार बिच्छू के डंक की वेदना के समान एक एक बार उस पत्ते के छुअन से वेदना होती रहती, न बैठ सकता न सो सकता न स्नान कर सकता न खा सकता न पी सकता न कोई वहां पर मित्रता है न कोई भगवान के बिंदु का दर्शन है। समय भगवान का बिंदु मिला था उसको तो दर्शन किया नहीं, साक्षात भगवान मिले उनकी बात को भी यूं उड़ा दे, तुम खाली बैठे हो और क्या करना है, हमें तो और कुछ काम करना है तुम्हारे पास नहीं थी। अब वहां पर जाकर के एक एक चेतन में सोचता उस समय ये बात मान लेता, यह नौबत ये स्थिति मेरी नहीं होती, ये अंत में पश्चाताप करता रहता। बंधु अनेक बार उस नारकी वेदना को धो करके संसारी प्राण आया है लेकिन यहाँ की हवा लगते ही पुनः वह वही कार्य करने लग जाता है जिसके द्वारा नरक के द्वार आसानी से खुल जाते।
पांच पाप को यह कभी भी अभिशाप नहीं मानता आया और धर्म विषय कचराओं का त्याग इनके लिए कभी भी अपने वरदान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए जब तो नाचक हम बड़ा और छोटा देखते हैं तो अपनी आंख ज्ञात होता है ये सब धर्म का फल है। मनोहर सुलभ विषय कचराओं से वे दूर रहते हैं, इसलिए दूर रहते हैं आत्मानुभूति रूपी आनंद उन्हें प्राप्त हुआ रहता है। इसलिए जो जहाँ पर रमता है उससे अन्यत्र जाने की कोई इच्छा तो नहीं करता।
नान विया पौ तो तमनो दो जनो ए हो तो परम कपया जो गुभनंती जो
ज्ञान विकसित विचक्षण होते हैं अर्थात तत्व ज्ञान जिन्हें बहुत रुचता है, शुद्ध जिसका मन हुआ है,
शुद्ध मन का मतलब क्या फिल्टर हो गया या धूल दिया गया, शुद्ध मन कैसा हुआ, शुद्ध मन इसलिए तत्व ज्ञान से मन शुद्ध हो जाता है। मन में जो विकार विषय और कषायों की वांछा होती है वह इसलिए होती है कि वह अज्ञान का परिणाम है। जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसे भेद ज्ञान प्राप्त होता है, उसका मन उसके माध्यम से शांत होता चला जाता है। जिसके द्वारा वह तृप्त होना चाहता था तत्व ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का परिणाम है। जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसे भेद ज्ञान प्राप्त होता है, उसका मन उसके माध्यम से शांत होता चला जाता है। जिसके द्वारा वह तृप्त होना चाहता था तत्व ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से, वह उसे ज्ञात हो जाता कि यह हमारे लिए और कुछ के कारण है। इस प्रकार जान करके तन से, मन से, वचन से वह बिल्कुल उन विषयों से और कषायों से दूर होता, उसका मन शांत होता, उसका मन शुद्ध होता। वह शुद्ध एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा वह अशुद्ध होना नहीं चाहता। ये बात अलग है, कुछ ऐसे ही कर्म के उदय आ जाए तो अपना अशुद्ध भी हो सकता, अशुद्ध हो सकता है, इसलिए अशुद्ध ही रहना दीजिए, ऐसा अच्छा नहीं। किंतु एक बार शुद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से वह महामना बनने का अधिकारी बन जाता है। वे धन्य है तत्व ज्ञान में विचक्षण होते हैं, शुद्ध मन को बनाए हुए हैं, वे ही ऐसे महाराज योगी इस परमात्म प्रकाश के योग्य माने जाते हैं, जिस उजाले में वे हमेशा हमेशा स्व और पर को देखते रहते जानते रहते हैं। भले वह अभी संसार में हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके भीतर हमेशा हमेशा इसी प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। धन्य है वे जिन्होंने अपने आत्म को उपलब्ध करने का प्रयास इन परमात्म प्रकाश जैसे दंतों के आलम्बन करके किया। आप लोगों को भी इसी प्रकार करना है, बार बार प्रयास करना है, निश्चित रूप से वह कार्य असंगत होगा। आप सोचिए तो सही, अनंत काल से ऋषियों की या संस्कार की स्थिति रही आत्मा के ऊपर, वह एकाध बार पढ़ने से, एकाध बार प्रवचन सुनने से, एकाध बार तीर्थ यात्रा करने से भले कैसे वह दूर हो सकता है। आप एक दिन के संस्कारित नहीं है, अनंत काल के संस्कारित कभी छोर नहीं है। कब से आप आ रहे हो सोचो, पांच पापों के अलावा, पंचेंद्र के विषयों के अलावा, कषायों के अलावा आत्मा के ऊपर संस्कार कुछ है ही नहीं। यह आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, इस प्रकार अनंत काली संस्कार को तोड़ करके आज कैसे आत्मज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, परमात्मा बनने के बारे में आप चर्चा सुन रहे हैं। इतने भीषण गर्मी में भी धन्यवाद के पात्र रहे आप, निश्चित बात है। ठीक है, जितना काम हो उतना तो कम से कम समर्थन करना चाहिए आगे के लिए, लेकिन इतना धन्यवाद को पात्र करने ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल अभिमान करने लग जाए। देखो महाराज जी ने कहा था हम तो धन्यवाद के पात्र है, ऐसा नहीं कि मतलब इसी प्रकार आप लोगों को विषयों को गौण करके, शारीरिक प्रतिकूलताओं को गौण करके, ये तो प्रतिकूलता ही रहती है। कहीं भी आप चले जाओ, मान लीजिए एयर कंडीशन मकान मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन बुखार आ गए तो क्या करोगे, सोचो विचार करो। गर्मी हो रही है इससे पंखा मिल गया तो बुखार आ गए तो आप क्या करोगे, बैठने की हिम्मत नहीं है तो क्या करोगे। मान लीजिए आपको पांचवी इंद्रिय ठीक है लेकिन मन ही बिगड़ गया तो क्या करोगे, पागल हो, पागल हो जाओगे तो। और पागल को आप क्या, ये कंडीशन और कंडीशन क्या है कुछ भी, सोचो विचार करो। मन आपका विषयों की ओर भले ही जा रहा है लेकिन मन तो कम से कम जानने की देखने की क्षमता रखता है, विवेक रखता है कि भला कौन सा बुरा कौन सा। अब थोड़ी सोचिए, विचार करिए, प्रयास करिए, एक ही के कदम रखा जाता है कि बड़ा बड़ा बड़े योद्धा होकर के भी यदि कदम नहीं रखते तो वो मंजिल पा नहीं सकते, क्योंकि चलना अनिवार्य होता है। नहीं गच्छन वही निधे वो भी ऐसे कोई सूक्ति आती है कि नहीं चलता हुआ वह महान योद्धा भी आगे एक कदम नहीं रखता, मंजिल को प्राप्त करने तो बहुत दूर रहता है, थोड़े भी नहीं चल सकता, कदम उठाना अनिवार्य है। विषय और कषायों के लिए तो आप कदम उठे हुए हैं लेकिन एकाध बार त्याग के बारे में, ऐसा त्याग नहीं विषयों की प्राप्ति के लिए, नहीं, विषय और कषायों को तो अभिशाप मान करके चलना होगा। ज्ञान में विचक्षण है, शुद्ध मन वाले हैं, वे ही इस परमात्म प्रकाश के योग्य माने जाते हैं। कथयन्ति, ये परम योग्य हैं। परम योग्य लोग इस प्रकार कहते हैं, काम भनंती किसको कहते हैं, योग्य किसको, व्यवहारेण परमात्म प्रकाश अभिज्ञान शास्त्रस्य, व्यवहारेण के अपेक्षा से परमात्म प्रकाश के अभिज्ञान जो शास्त्र है, निश्चय ऋतु परमात्म प्रकाशक शब्द वाचस्य शुद्धार्थ स्वरूप, परमात्म प्रकाश के शब्द जो कि उसका अर्थ क्या है, शुद्धार्थ स्वरूप, उसका योग कौन होता है, वो विचक्षण ज्ञानी। तम तम कम इतम भूत कश्चित कथम भूत हो, ऐसा होता है स्वसंवेदन ज्ञान विचक्ष। यह जो शब्दावली ये प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही होती थी, प्रयुक्त होती थी, इन्हीं शब्दों को इन्हीं कुछ दो या श्लोकों को लेकर के विद्वानों को यह शोध रेफरेंस दिया जाता कि इससे स्पष्ट होता है यह छठी शताब्दी सिद्ध हो जाती है। वो तो ठीक है लेकिन इनका कहना, इनका ये कहना कि ये कह दे तो हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन इनका ये कहना कि चूंकि ये अपभ्रंश के प्रचलन होने के कारण इतनी प्राचीन तो ये शुद्ध नहीं हो सकते अकलंक अपने कुंद कुंद देव, ये कहने ये खाने इसको इस व्यक्ति हाँ हाँ दोहक छंद, एक छंद की बात है, शब्द की बात नहीं है, ये दोहक छंद भी प्राकृत लक्षण से युक्त है, न कि दोहक छंद अपभ्रंश का एक प्रतीक है। अपभ्रंश में भी इसका प्रयोग है ये बात अलग है, लेकिन अपभ्रंश से पहले भी प्राकृत में दोहक छंदों का प्रयोग होता था और इसको जो है छठी शताब्दी नहीं लिखी जा सकती साधारण। बोलने लगा हिंदी से दिया गया वो इतनी शुद्ध बात, अपभ्रंश को इतने प्राचीन और प्राकृत को उससे मिश्रित कहने के कारण छठी शताब्दी में ला करके रख देना ये कोई बहाना नहीं है। इसी प्रकार एक बड़ी भूल जैसे हो गई कि लोक विभाग इसको लेकर के जो नियम सार में लिखा गया तो वह लोक विभाग एक ग्रंथ है, वो तो बहुवचन में प्रयुक्त है। लेकिन उसका अर्थ उन्होंने ग्रंथ से कोट नहीं किया, यह लोक विभाग है अर्थात लोक में जो विभाग, लोक का जो विभाजन करने वाला ग्रंथ है उसमें जाकर के आप देख लीजिए, केवल वह ग्रंथ का रेफरेंस नहीं है, यह संकेत जो है विशेष विशेष संबंधी है न कि ग्रंथ संबंधी, ये संकेत जो दिया जा रहा लोक विभाग यह विशेष संबंधी। तो कोई बात नहीं, आप कितने भी उद्देश्य बढ़ाओ लेकिन निर्देशन जो है ना संयुक्तिक होना चाहिए। आप इतिहास के बारे में कह रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना अर्थ के बारे में नहीं कहा जा रहा, इतिहास के बारे में कहा रहे, इतिहास इति इति हास मत बनाइए आप, इसको अपने ढंग से उपहास न करिए। निश्चित बात है अब इसी ढंग से जो है बोला जाएगा तभी तो इस प्रकार के इतिहास की जो कली कली खुलेगी। दो तीन जो है ऐसे रेफरेंस मिल गए। दोरक छंदसा प्राकृत लक्षण ही नीचे युक्त है। देखो दोरक छंदसा क्या प्राकृत लक्षण के द्वारा यानी प्राकृत व्याकरण से यह बना हुआ है। लक्षण का मतलब व्याकरण होता है। प्राकृत लक्षण के द्वारा दोरक छंद से यह निर्मित युक्त है। तथापि फिर भी निश्चय ने परमात्मा जो शब्द वाच्य शुद्धात्म स्वरूपापेक्षा लक्षण छंदो विवर्जित हो।
परमात्मा
दोनों तरफ से लगाए फिर भी निश्चय ने के अपेक्षा से प्रमाद प्रकाश शब्द के वाच्यभूत जो शुद्धात्म स्वरूप है उसको यदि दृष्टि में रखते हैं तो वह तो न लक्षण से युक्त है न छंद से युक्त है उससे रहित है। क्योंकि अध्यात्म में लक्षण छंद आदि आदि कोई मायने नहीं रखते। और वैसे ही अपने ये दोहा जो है ना ये लक्षण छंद इत्यादि से वर्जित है मैंने सदोष है फिर भी हम अध्यात्म की दृष्टि से कह रहे हैं। एवं भूत सन अयम किं करोति इस प्रकार या ग्रंथ भूता हुआ क्या करता शुद्ध भावनिया भावित सन शुद्ध भावना के साथ यदि इसकी भावना की जाती है तो शुद्धात्म संविधि समुत्पन्न रागादि विकल्प रहित शुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न रागादि से विकल्प से रहित परमानंद एक लक्षण सुख विपरीतानां परमानंद एक लक्षण सुख उससे विपरीत चतुर्गति दुखानां विनाशं करोति थी। चारों गति संबंधी सुख को यह नष्ट कर देने वाला है।